धवला लेक्चर नंबर 9 ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूनं सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुव मम पत्थसौखमणवज्रं केवलपोहनिज्य दुन्नयतिमिरञ्जिनं नमः आचार्य वीरसेन स्वामी रचित यह धवला टीका है जो षटखंडाग्रम ग्रंथ पर रची हुई है जिसके कर्ता है भगवान पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। ये दूसरी बार के अपने प्रवचन में पहली पुस्तक के 72 पृष्ठ पर आए हम, पृष्ठ संख्या 72। यहाँ धवला संबंधी ये षटखंडागम संबंधी बात चल रही है, ये कैसे लिखा गया है, उसके कर्ता कौन है, उसकी बात चल रही थी। कर्ता में भी उसके अर्थकर्ता है तीर्थंकर भगवान महावीर, उसकी बात की थी। और अभी उनके पश्चात गणधर हुए, फिर जैसे श्री परंपरा से अगर हम परिपाटी से देखते हैं तो गौतम सवेर फिर लोहाचार्य जम्बू स्वामी, उसके बाद ये 11 अंग और 14-10 पूर्व के धारी ने 14 पूर्व के धारी बताए थे, 5 बताए थे ना पेज नंबर 67 पर। देखो महावीर के बाद, भगवान महावीर के बाद पहली लाइन में देखो यहाँ 67 पेज गौतम सवीर लोहाचार्य जम्बू स्वामी, इन्हें 7 प्रकार के रुद्धियों से युक्त थे और श्रुत केवली थे, सकल श्रुत रूपी सागर के पारगामी, और केवल ज्ञानी होकर निर्वाण प्राप्त किया था। उसके बाद विष्णु नंदी मित्र अपराजित गोवर्धन भद्रबाहु आचार्य परिपाटी क्रम से, यानी शिष्य उनके शिष्य इस तरह से 14 पूर्व के धारी। उसके बाद वो 11 नाम बताए थे, वो 11 अंग और हाँ एकाध होगी नहीं थी ऐसा भी नहीं है, ये 7 रुद्धियों के धारक थे, ये 11 अंग और 10 पूर्व के धारी हुए। उसके बाद 5 आचार्य हुए और वो 11 अंगों के और 14 पूर्वों के एक देश धारक हो गए। उसके बाद 4 आचार्य के नाम बताए, वो आचार अंग के तो पूरे ज्ञान और अंग अन्य जो अंग है और पूर्व है उनके एक देश के धारक हुए। उसके बाद सभी अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार्य परंपरा से धरसेन आचार्य को प्राप्त हुआ था। फिर हमने देखा उन्होंने मुनि संघ को पत्र लिखा था और 2 शिष्यों की जिनको वो सिखा सके उनको बुला लिया था, उसकी बात हमने पढ़ ली थी। उसके पश्चात उन्होंने उनको ये पूरा ग्रंथ यानी षटखंडागम संबंधी ने जो उनके जो अंग और पूर्वों का जो है वो बता दिया था, उनको सिखा दिया था। और हमने देखा था कि आषाढ़ शुद्ध शुक्ल एकादशी को ये पूर्ण हुआ था, पढ़ाना उनका पूर्ण हुआ था। उसके पश्चात की बात अभी हम पढ़ रहे हैं पृष्ठ संख्या 72 पर, यानी धरसेन भट्टारक ने उनका नाम भूतबली और पुष्पदंत रखा। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ये नया पैराग्राफ है वहां से। तदनंतर उसी दिन वहां से भेजे गए उन दोनों ने, यानी आचार्य दर्शन ने उनको, यानी जब उनका पढ़ाना
शुरू किया,
पूर्ण हुआ उसी दिन उनको भेज दिया। तो उन दोनों ने गुरु के वचन अर्थात गुरु की आज्ञा उल्लंघनीय होती है, उन्होंने दर्शन आचार्य ने दो शिष्यों को पढ़ाना पूर्ण हुआ। ग्रंथ समाप्त किए ने उनको पढ़ाने, उनकी पढ़ाई पूर्ण हुई। और फिर उसी दिन उन्होंने उनको वहां से चले जाने की आज्ञा दी। तो गुरु को ऐसा नहीं पूछा जाए भाई हम अभी यहाँ रहते हैं, हमको यहाँ रहना है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो गुरु की आज्ञा है तो वो गुरु की आज्ञा उल्लंघनीय होती है, नहीं उसको ताला नहीं जाता। ऐसा विचार कर आते हुए अंकलेश्वर में वर्षाकाल बिताया। ये उनकी पढ़ाई वगैरह वो गिरिनगर में हुई थी ना, वो चंद्र गुफा में वहां पर थे वो। और दर्शन आचार्य ने बता दिया कि अब तुम चले जाओ, तो चले गए। तो अंकलेश्वर में वर्षाकाल बिताया, चातुर्मास वहां बिताया। वर्षा योग को समाप्त कर, पेज नंबर 72, और जिनपालित को देखकर उसके साथ पुष्पदंत आचार्य तो वनवासी देश को चले गए और भूतबली भट्टारक तमिल देश को चले गए। तदनंतर पुष्पदंत आचार्य ने जिनपालित को दीक्षा देकर 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के सूत्र बनाकर और जिनपालित को पढ़ाकर अनंतर उन्हें भूतबली आचार्य के पास भेजा। तदनंतर जिन्होंने जिनपालित के पास 20 प्ररूपणा अंतर्गत सत प्ररूपणा के सूत्र देखे हैं और पुष्पदंत आचार्य अल्पायु है, इस प्रकार जिन्होंने जिनपालित से जान दिया है, अतएव महाकर्म प्रकृति प्रावृत का विच्छेद हो जाएगा, इस प्रकार उत्पन्न हुई है बुद्धि जिनको, ऐसे भगवान भूतबली ने द्रव्य प्रमाणानुगम को आदि लेकर ग्रंथ रचना की। द्रव्य प्रमाणानुगम ने वो संख्या आ गई, सत प्ररूपणा तो केवल इन्होंने की, बाकी आगे की जो द्रव्य प्रमाणानुगम से सारी रचना है भूतबली आचार्य की। इसलिए इस खंड सिद्धांत की अपेक्षा भूतबली और पुष्पदंत आचार्य भी श्रुत के कर्ता कहे जाते हैं। खंड सिद्धांत यानी ये पूरा नहीं ना, पूरे द्वादशांग नहीं है, उसका कुछ भाग आया इसमें, इसलिए षट खंड कह दिए। इसके अलग अलग विषयों की अपेक्षा उनके नाम बताएंगे अभी, कौन कौन से खंड है क्या है, यानी ग्रंथ के कर्ता कौन है उसकी चर्चा चल रही है। षटखंडागम के कर्ता कौन है, महावीर से शुरुआत की थी और पूरी आचार्यों की परिपाटी बता दी। इस तरह 73 पृष्ठ, मूल ग्रंथकर्ता वर्धमान भट्टारक है यानी महावीर स्वामी। अनुग्रंथकर्ता, अनु यानी उसके फॉलोअर, उनके पश्चात वाले, गौतम स्वामी है। और उपग्रंथकर्ता राग द्वेष और मोह से रहित भूतबली पुष्पदंत इत्यादि अनेक आचार्य है। शंका, यहाँ पर कर्ता का प्ररूपण किस लिए किया गया है, उसका समाधान, शास्त्र की प्रमाणता के दिखाने के लिए यहाँ पर कर्ता का प्ररूपण किया गया है, क्योंकि वक्ता की प्रमाणता से ही वचनों में प्रमाणता आती है, ऐसा न्याय है। क्योंकि ये किसने बताया, लौकिक में भी देखते हैं ना, ये बात किसने कही, तो हम किसी का नाम लेते हैं, हाँ वो तो ठीक है तो फिर ये सही होगी, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान से शुरू करके आचार्य परंपराओं से ये बातें अंत में लिखित रूप से हो गई है, इसलिए कहते वक्ता के प्रमाणता से ही वचनों में प्रमाणता आती है। अब जीव स्थान के अवतार का प्रतिपादन करते हैं। अब ये कौन कौन से 6 खंड है उनके नाम यहां बताएंगे, अर्थात पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने जीव स्थान, खुद्दाबंध, बंध स्वामित्व, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंध नामक जिस षटखंडागम की रचना की, उनमें से प्रकृत में यहाँ जीवस्थान नाम के प्रथम खंड की उत्पत्ति का क्रम कहते हैं वह इस प्रकार है। यानी यहाँ से जीवस्थान नाम का प्रथम खंड शुरुआत हो जाता है, वह उत्पत्ति को ही अवतार कहते हैं। वह अवतार 4 प्रकार का है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। कौन सी 4 बातें बताई?
उत्पत्ति है वो 4 प्रकार से बताई है, उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम।
ये इसका सब विस्तार से विवेचन आने वाला है। उन 4 में पहले उपक्रम का निरूपण करते हैं, जो अर्थ को अपने समीप करता है उसे उपक्रम कहते हैं। उस उपक्रम के 5 भेद है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। अभी उसका अर्थ क्या क्या है उसकी बात यहाँ बताएंगे। हमने पहले उत्पत्ति, ने यहाँ ग्रंथ की उत्पत्ति की बात है, कौन सी 4 बातें देखी? उपक्रम, निक्षेप, नय और अनुगम। अब उपक्रम भी 5 प्रकार का है, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। अब अनुपूर्वी के बारे में यहाँ बता रहे हैं 64 नंबर, विहाय आनुपूवी दशहाणामं च छव्यं माणं वत्तौ वदाय तिविहा तिविहो अत्थाहि आरोवी। अब इसमें से आनुपूर्वी 3 प्रकार की है। ये जो हमने उपक्रम के 5 भेद देखे हैं, उनमें से जो 5 में से आनुपूर्वी नाम का प्रथम भेद है वो 3 प्रकार की है, उसको अनुपूर्वी उपक्रम कहेंगे। नाम के 10 भेद है, प्रमाण के 6 भेद है, वक्तव्यता के 3 भेद है और अर्थाधिकार के भी 3 भेद है। ये कौन कौन से अभी बताएंगे क्रम से। अभी 74 पृष्ठ पर आते हैं, ये अनुपूर्वी के 3 भेद बता रहे हैं यहाँ पर, पूर्वानुपूर्वी, पश्चादानुपूर्वी और यथा तथानुपूर्वी। इस तरह अनुपूर्वी के 3 भेद हैं। जो वस्तु का विवेचन मूल से परिपाटी द्वारा किया जाता है उसे पूर्वानुपूर्वी कहते हैं। इसका अर्थ शुरू से लास्ट अंत तक इस क्रम से बताया जाता है उसको कहेंगे पूर्वानुपूर्व। उसका उदाहरण इस प्रकार है, ऋषभनाथ की वंदना करता हूँ, अजितनाथ की वंदना करता हूँ इत्यादि क्रम से ऋषभनाथ को लेकर आदि लेकर महावीर स्वामी पर्यंत क्रमवार वंदना करना सो वंदना संबंधी पूर्वानुपूर्वी उपक्रम है। यानी जिस विषय संबंधी बता रहे उसकी बात है। केवल हमको तीर्थंकरों के नाम बताने होंगे तो उनके उन संबंधी पूर्वानुपूर्वी ऐसा कहेंगे। अब उल्टे क्रम से अगर कहना है तो उसको पश्चातानुपूर्वी कहेंगे। देखो, जो वस्तु का विवेचन ऊपर से अर्थात अंत से लेकर आदि तक परिपाटी क्रम से, परिपाटी ने उसका क्रम भंग नहीं हो रहा, केवल शुरुआत शुरू से लेकर अंत तक जाएंगे तो पूर्वानुपूर्वी और लास्ट से शुरुआत क्रम से शुरू तक आएंगे तो पश्चातानुपूर्वी। उसको प्रतिलोम कहते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुक्रम है सीधा क्रम, प्रतिलोपण है उल्टा क्रम, उसे पश्चात अनुपूर्वी उपक्रम कहते हैं। जैसे 65 ऊपर हम कहेंगे, एस करे मी अपणम जिनवर वसह सवर्ढमानस सेसाणम च जिनाणम शिवसुह कंखा विलोमेन। ये चार नंबर किसमें है? मूलाचार। एस करे मी प्रणाम जिनवर वसह सवर्ढमानम च, वही बात है ना, मूलाचार में बताए ने वो जिनवर महावीर भगवान को नमस्कार करते हैं और शेष जिन ऊपर शिव सुह कंखा लिखा और नीचे लिखा है शेषानम च जिनानम स गण गणधरानम। गणधर उनके गणों के सहित सबको नमस्कार करते हैं और उल्टे क्रम से विलोम है ना लिखा है ना, विलोम क्रम अनुलोम और विलोम, प्रतिलोम कहो या विलोम कहो बात एक ही। जैसे ये अभी हमने जो देखा गाथा पढ़ी 65 नंबर की, उसका अर्थ देखते हैं। मोक्ष सुख की अभिलाषा से यह मैं, शिव सुख कंखा है ना, यानी मोक्ष सुख की अभिलाषा करने वाला मैं जिनवरों में श्रेष्ठ ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करता हूँ और विलोम क्रम से अर्थात वर्धमान के बाद पार्श्वनाथ को, पार्श्वनाथ के बाद नेमिनाथ को इत्यादि क्रम से शेष जिनेन्द्रों को भी नमस्कार करता हूँ। जो कथन अनुलोम और प्रतिलोम क्रम के बिना जहाँ कहीं से भी किया जाता है उसे यथा तथानुपूर्वी कहते हैं। यानी कोई क्रम नहीं, कहीं से भी हम बीच में भी कह सकते हैं, किसी का भी नाम ले लो तो होता है यथा तथानुपूर्वी। ये 66 नंबर में पढ़ेंगे, गय गवल सजल जल हर पर हुसि गलय भमर संकासो हरिउल वंश पईओ शिव माऊ वच्छो जयऊ। हाथी अरण्य भैंसा जल परिपूर्ण और सघन मेघ कोयल मयूर का कंठ और भ्रमर के समान वर्ण वाले हरिवंश के प्रदीप और शिवादेवी माता के लाल ऐसे नेमिनाथ भगवान जयवंत हो। यानी कहीं से भी नेमिनाथ का ही नाम लिया, हम शांतिनाथ का ही नाम लेंगे, यानी कोई क्रम नहीं है तो उसको कहेंगे इत्यादि यथा तथानुपूर्वी का उदाहरण समझना चाहिए। यह जीवस्थान नामक शास्त्र खंड सिद्धांत की अपेक्षा पूर्वानुपूर्वी क्रम से लिखा गया। खंड सिद्धांत यानी 6 खंड है, वो सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत के ये 6 खंड है वो क्रम से जीवस्थान वगैरह वगैरह है, तो कहते पूर्वानुपूर्वी क्रम से लिखा गया है क्योंकि षटखंडागम में जीवस्थान प्रथम खंड है। वेदना कषाय प्रावृत के मध्य से अनुलोम और विलोम क्रम के बिना जीवस्थान के सत्संख्या आदि अधिकार निकले हैं। यानी ये कहाँ से कौन से मूल इसमें से निकले हैं, अपने 12 अंगों में से किस कौन सा विषय है, तो कहते वेदना कषाय प्रावृत के मध्य से ही लिए, कोई अनुलोम या प्रतिलोम वहां क्रम नहीं रखा है। इसलिए जीवस्थान यथा तथानुपूर्वी में भी गर्भित है। क्या कहना चाहते हैं, यदि 6 खंडों की बात करेंगे तो जीवस्थान पहला है तो कहेंगे ये तो पूर्वानुपूर्वी क्रम से लिखा है, और उसका विषय कहाँ से निकाला है तो वेदना कषाय प्रावृत के मध्य से ही निकाला है, इसलिए उसको यथा तथानुपूर्वी भी कहेंगे। किंतु इस जीवस्थान खंड में केवल पश्चातानुपूर्वी संभव नहीं है, उल्टा क्रम संभव नहीं है। यानी कहीं से भी किसी भी अपेक्षा लगाओ तो ये उल्टे क्रम से नहीं सिद्ध होता, ये कहना चाहिए।
छह खंडों में पहला है, इसलिए वो पूर्वानुपूर्वी हुआ। और उसका विषय वस्तु कहाँ से ली है, उस अपेक्षा से यथा तथानुपूर्वी होता है। तो हमने उपक्रम के कितने भेद देखे थे?
तीन,
पांच, अनुपूर्वी, नाम, प्रमाण वगैरह। उसमें से अनुपूर्वी तीन प्रकार की देखी। अब वहां नाम के दस भेद बताए थे, उसकी चर्चा चलेगी। उसको कहते हैं नाम उपक्रम के दस भेद। वे इस प्रकार है, उपक्रम का अर्थ हमने देखा है, उपेन नजदीकता होती है ना, समीप, अर्थ को समीप करना। तो ये नाम उपक्रम की बात यहाँ बता रहे हैं, उसके दस भेद है, वो इस प्रकार है, गौण्य पद, नौगौण्य पद, आदान पद, प्रतिपक्ष पद, अनादि सिद्धांत पद, प्राधान्य पद, नाम पद, प्रमाण पद, अवयव पद और संयोग पद। गुणों के भाव को गौण्य कहते हैं। गौण करना वो बात नहीं है, गौण्य, गुण से गौण्य शब्द तैयार हुआ। जो पदार्थ गुणों की मुख्यता से व्यवहृत होते हैं, व्यवहृत होते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं, यानी हम व्यवहार में लौकिक में वो फॉलो करते हैं, फॉलोड इन प्रैक्टिस, व्यवहृत है ना, फॉलोड इन प्रैक्टिस, यानी जो पदार्थ गुणों की मुख्यता से व्यवहृत होते हैं वे गौण्य पदार्थ है। वे गौण्य पदार्थ पद अर्थात स्थान या आश्रय जिन नामों के होते हैं उन्हें गौण्य पद नाम कहते हैं। यानी वो गुण की अपेक्षा वो नाम रखा जाता है अपनी भाषा में। पहले में हमने देखा था नाम के लिए किसी अपेक्षा बिना नाम रखते हैं तो उसको हमने नाम निक्षेप कहा था। उसमें किसी की अपेक्षा बिना में हमने कौन सी बातें लगाई थी याद है? जाति, जाति बताए थे। हाँ, अपना नहीं कहा था उसने, नाम रखना है, गुण और क्रिया। हाँ, जाति, द्रव्य, द्रव्य ने वो संयोग वाला द्रव्य लिया था। हाँ, जाति लगाई थी, द्रव्य लगाया था, गुण और क्रिया लगाई थी। अब यहाँ दस प्रकार के भेद बता रहे हैं। तो जो पदार्थ गुणों की मुख्यता से व्यवहृत होते हैं, व्यवहृत होते हैं ना, हम उसको गुणों की मुख्यता से उसका नाम रखते हैं, व्यवहार में लिया जाता है, वे गौण्य पदार्थ पद, पद ने उसके शब्द अर्थात स्थान या आश्रय जिन नामों के होते हैं, यानी जो नाम इन गुणों की अपेक्षा रखे जाते हैं उन्हें गौण्य पद नाम कहते हैं। वहां हमने गुण की अपेक्षा नाम रखा था, यह वही बात है, गौण्य पद नाम अर्थात जिस संज्ञा के व्यवहार में अपने विशेष गुण का आश्रय लिया जाता है उसे गौण्य पद नाम कहते हैं। अभी उसका उदाहरण, जैसे सूर्य की तपन और भास गुण की अपेक्षा तपन और भास्कर इत्यादि संज्ञाएं है, यानी सूर्य को भास्कर भी कहते हैं, सूर्य को बहुत सारे नाम है ना, उसकी अपेक्षा से ये कहते हैं। जिन संज्ञाओं में गुणों की अपेक्षा न हो अर्थात जो असार्थक नाम है उन्हें नौगौण्य पद नाम कहते हैं, जैसे चंद्रस्वामी, सूर्यस्वामी, इंद्रगोप इत्यादि नाम। यानी वो भले नाम है पर वो कोई चंद्र सूर्य का स्वामी नहीं है और वो कोई इंद्र का गोप नहीं है, तो ये ऐसे ही नाम रखे गए। अंदर होगा, अरविंद भाई का अंदर होगा। हाँ, 76 पृष्ठ, विशेषार्थ। जिन मनुष्यों के चंद्रस्वामी आदि नाम रखे जाते हैं उनमें चंद्र आदि का न तो स्वामीपना पाया जाता है और न इंद्र के वे रक्षक ही होते हैं, केवल ये नाम रूढ़ी से रखे जाते हैं। इनमें गुणादि की कुछ भी प्रधानता नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नौगौण्य पदनाम कहते हैं। यानी कोई गुणों की मुख्यता नहीं उसमें, किसी की अपेक्षा नहीं है। अपने निक्षेप में भी ऐसा ही देखा था ना। अब हमने कौन से दो देखे, गौण्य पदनाम और नौगौण्य पदनाम। ग्रहण किए गए द्रव्य के निमित्त से जो नाम व्यवहार में आते हैं, अर्थात जिनमें द्रव्य के निमित्त की अपेक्षा होती है, उन्हें आदान पदनाम कहते हैं। हमने अभी जो जाति द्रव्य वगैरह देखे थे ना, उसमें यही बात बताई थी। तो आदान पदनाम में वो बताते अभी विशेषार्थ में, आदान पदनामों में संयोग को प्राप्त हुए द्रव्य के निमित्त से, ये आदान किसको कहा, संयोग को प्राप्त हुए द्रव्य को आदान कहा, उसके निमित्त से उत्पन्न हुई अवस्था विशेष की वाचक संज्ञाएं ली जाती है, यानी उसको बताने वाले नाम बताए। ये नाम क्यों दिए, वो द्रव्य जिस द्रव्य का संयोग हुआ है उसकी अपेक्षा से नाम दिए गए। अर्थात आदान आदेय भाव की मुख्यता से जो नाम प्रचलित होते हैं, उन्हें आदान पदनाम कहते हैं। एक आदान पद नीचे फुट नोट देखो, से किमतम आयान पदेनम, आयान पदेन से क्या समझना, दम्मो मंगलम चूलिया चाउरंगिज्जम असंख्यम आवंती तथिज्जम अद्वैज्जम जन्नैज्जम पुरिसैज्जम एल्लैज्जम वीरयम धम्मो मग्गो समो शरणम गंथो जम मह्यम सेतम आयान पयेणम। शायद आगे उसका कुछ लिखा होगा तो पता नहीं है। पहले संस्कृत में कुछ लिखा है क्या प्राकृत में, आदानम पदम नाम आत्मद्रव्य निबंधनम, द्रव्य निबंधन बताया उसका, वही हमने पहले भी देखा था। यानी वो द्रव्य के संयोग से जो नाम बताए दिए जाते हैं उसको आदान पदनाम कहते हैं। इस आदान पदनाम का गुण नाम में अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि गुण नामों में आदान आदेय भाव की विवक्षा नहीं रहती। यानी वो गुण है, वो द्रव्य का अपना अंगीभूत है, वो बाहर से संयोग में आया हुआ अन्य द्रव्य नहीं है। यदि गुण नामों में भी आदान आदेय भाव की विवक्षा मान ली जाए तो गौण्य पदनाम गुणाश्रित नहीं रह सकते, क्योंकि आदान आदेय भाव की मुख्यता से उनका आदान पदनामों में अंतर्भाव हो जाता है। पूर्ण कलश इस पद को आदान पदनाम समझना चाहिए। यहाँ तो अभी तो बाहर से दो अन्य जो है ना उसकी बात ही है, और उसमें थोड़ी ज्यादा तो अलग अलग उसके भी और उदाहरण बता देंगे। वहां तो हमने संयोग की अपेक्षा लिए थे, और उसका जो जैसे शरीर का ही अंग कुछ हो जाता है तो हाँ समवाय के लिए। अभी यहाँ कहते शंकाकार पूछ रहे, पूर्ण कलश या आदान पदनाम नहीं हो सकता। इसका खुलासा इस प्रकार है, घट की कलश यह संज्ञा ग्रहण किए गए किसी द्रव्यादि के आश्रय नहीं है, क्योंकि कलश इस संज्ञा की द्रव्यादि के निमित्त की विवक्षा के बिना ही प्रवृत्ति देखी जाती है। शंकाकार की शंका है कि पूर्ण कलश में कलश शब्द तो किसी द्रव्य के संयोग से वो शब्द नाम नहीं दिया गया। इसी तरह पूर्ण यह शब्द भी आदान पदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण यह शब्द पर्याप्त का वाचक होने से, पर्याप्त नहीं वो पूर्णता, उसका गौण्य पदनाम में अंतर्भाव हो जाता है। पूर्ण और कलश इन दोनों पदों का समास भी आदान पदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि उसका
भाव संयोग में अंतर्भाव हो जाता है। समाधान, ऐसी शंका करना उचित नहीं है, क्योंकि जलादि द्रव्य के आधारपने की विवक्षा में पूर्ण कलशी शब्द को आदान पदनाम माना गया है। शंकाकार ने यह पूछा था, अकेले कलश को भी आदान पदनाम नहीं कह सकते, अकेले पूर्ण को भी नहीं कहते, पूर्ण कलश यानी वो उसने पूर्ण कलश में वो पानी की अपेक्षा नहीं किए हुए कलश पूर्ण है या अधूरा है ऐसे वो उसने कहे, तो वो भाव में निक्षेप, उसे भाव में अंतर्भूत हो जाएगा। ये द्रव्य का संयोग कहाँ हुआ ये कहते, तो यहाँ द्रव्य का संयोग कौन से, जल का संयोग है, और जल से पूर्ण कलश को पूर्ण कलश कह दिया, इसलिए उसको आदान पदनाम कह सकते हैं, ये उसका समाधान है। विशेषार्थ, जलादि द्रव्य आदान है, आदान का अर्थ हमने क्या देखा था, संयोग, ये संयोग को प्राप्त हुए द्रव्य के निमित्त से ये नाम दिया गया है, तो जलादि द्रव्य आदान है और कलश आदेय है, इसलिए पूर्ण कलश इस शब्द का आदान पद नाम में अंतर्भाव होता है। यह बात गौण्य पद नाम में नहीं है, इसलिए उसमें उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। यदि गौण्य पद में इसकी विवक्षा की जाएगी तो वह गौण्य पद न कहलाकर आदान पद की कोटि में आ जाएगा। इसी प्रकार अविधवा इस पद का भी विचार कर आदान पद नाम में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। शंकाकार पूछते हैं, अक्लिष्ट अर्थात सरल आदान पद नाम कौन से हैं? ये कहते हैं ऐसे क्लिष्ट क्लिष्ट उदाहरण मत बताओ, सरल हमको बता दो। समाधान, वधु और अंतर्वत्नी इत्यादि सरल आदान पद नाम समझना चाहिए, क्योंकि स्वीकृत पति की अपेक्षा वधु और धारण किए गए गर्भस्थ पुत्र की अपेक्षा अंतर्वत्नी संज्ञा प्रचलित है। कुमारी, वंध्या इत्यादि प्रतिपक्ष पद नाम है, ये आदान पद नाम की बात हो गई ना, प्रतिपक्ष पद नाम कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि आदान पदों में ग्रहण किए गए दूसरे द्रव्य की निमित्तता कारण पड़ती है और यहां पर अन्य द्रव्य का अभाव कारण पड़ता है। तो कौन कौन से देखे हमने, गौण्य पद नाम देखा, नौगौण्य नाम पद देखा, फिर आदान पद नाम देखा, उसमें द्रव्य के निमित्त की अपेक्षा, और यहाँ प्रतिपक्ष पद नाम लिया यानी अन्य द्रव्य का अभाव कारण है, ऐसा ये प्रतिपक्ष पद नाम, इसलिए आदान पद नामों के प्रतिपक्ष कारणक होने से कुमारी या वंध्या इत्यादि पद प्रतिपक्ष पद नाम जानना चाहिए। ये समझ में आई बात, वधु में वहां पति की अपेक्षा लगाई और यहाँ अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसका अभाव बताने के लिए कुमारी कहा, या पुत्र नहीं उसके लिए उसको वंध्या कहा। अब अनादि सिद्धांत पद, अनादि काल से प्रवाह रूप से चले आए सिद्धांत वाचक पदों को अनादि सिद्धांत पद नाम कहते हैं, जैसे धर्मास्तिका अधर्मास्तिका इत्यादि। इसका यही नाम क्यों है, वो अनादि से ही चला है, वो अनादि के सिद्धांत है, इसको ज्ञानावरण ही क्यों कहना, इसको मोहनीय क्यों कहना, दूसरा नाम क्यों नहीं कहना, अनादि के नाम। ये सभी जो हम देखते हैं ना कि द्वीपों के नाम है, पर्वतों के हैं, ये कुछ जो कोई हम देख रहे हैं सिद्धांतों में, ये सारे नाम अनादि से। अपौरुषेय होने से सिद्धांत अनादि है। अपौरुषेय का अर्थ क्या होता है,
हाँ किसी पुरुष के द्वारा उत्पन्न नहीं है, वो तो अनादि से ही चला रहा है। वह सिद्धांत जिस नाम रूप पद का आश्रय हो उसे अनादि सिद्धांत पद कहते हैं। अब प्राधान्य पद नाम, बहुत से पदार्थों के होने पर भी किसी एक पदार्थ की बहुलता आदि द्वारा प्राप्त हुई प्रधानता से जो नाम बोले जाते हैं उन्हें प्राधान्य पद नाम कहते हैं। जैसे आम्रवन, नीमवन इत्यादि, यानी उसमें अन्य भी तो वृक्ष पाए जाते हैं आम्रवन में, परंतु मुख्यतः किसकी वहाँ, आम्र के वृक्ष। वन में अन्य अविवक्षित वृक्षों के रहने पर भी, हम आम के मुख्य आम्रवन कहा ना, तो बाकी सारे अविवक्षित हो जाएंगे, उसको अविवक्षित कहेंगे। अविवक्षित वृक्षों के रहने पर भी विवक्षा से प्रधानता को प्राप्त आम और नीम के वृक्षों के कारण आम्रवन और नीमवन आदि नाम व्यवहार में आते हैं। ये कितने हुए प्राधान्य पद नाम हो गया, अभी सात नंबर है ना अभी। हाँ, नाम पद नाम, गौड़ आंध्र द्रमिल इत्यादि नाम पद नाम है। ये गौड़ आदि नाम गौड़ी आंध्री और द्रमिल भाषाओं के नाम के आधारभूत है। द्रमिल यानी द्रविड़ है, द्रविड़ क्या है, तमिल क्या है, द्रमिल द्रमिल ही शब्द है। ये हो गया अभी द्रमिल, ऐसा लगता है तमिल। अभी प्रमाण पद नाम है, गणना अथवा माप की अपेक्षा से जो संज्ञाएं प्रचलित है उन्हें प्रमाण पद नाम कहते हैं। ये नामों के भेद चल रहे, वो हमारे द्वादश अंक की रचना प्रमाण पद में हुए उस पद की बात नहीं हो रही है, ये पदों के भेद नहीं है, नामों के भेद है। तो गणना अथवा माप की अपेक्षा ये संज्ञा है, जैसे सौ हजार यानी वो संख्या है ना अलग अलग। फिर द्रोण खारी, द्रोण का अर्थ होता है 16 शेर का एक द्रोण होता है। खारी पल 24 सेकंड का एक पल होता है। तब हमने निकाला था सबने, हाँ ढूंढ के निकाला था, यहाँ लिखा है मेरे पास इसलिए मैं बता रही हूँ। 24 सेकंड का एक पल, खारी का अर्थ यहाँ नहीं लिखा है मेरे यहाँ। हाँ हम कहते पल भर में, पल 24 सेकंड का एक पल होता है। क्षण क्षण कोई दूसरा एक नाम निमिष पही है, निमिष हम कहते निमिषार्ध में। तुला कर्ष इत्यादि, तुला वजन को कहते हैं ना, कर्ष 16 मासा को कहते हैं, 16 मासा किधर, मासा है नाम का एक वजन का माप है।
हाँ।
सोना है ना, तोला मासा और रत्ती कुछ सोना, गुंज गुंज। हाँ हाँ, ये इसको कर्ष कहा। ये सब प्रमाण नाम प्रमेयों में पाए जाते हैं, अर्थात इन नामों के द्वारा तत्प्रमाण वस्तु का बोध होता है। जैसे हम अपने अभी ग्राम है, किलोग्राम है, लीटर है, ये क्या है, वो सारे प्रमाण पद नाम है। अब अवयव पद नाम कहते हैं, नौ नंबर। अवयव दो प्रकार के होते हैं, उपचित अवयव और अपचित अवयव। यानी हम कहते हैं वो अवयवों के नाम से हम उनको बुलाते हैं, तो ये हो सकता है कि रोग के कारण कोई अवयव कोई ऐसा जो नॉर्मल नहीं है ऐसा हो जाए तो उसके नाम से भी बुलाते हैं हम। तो देखो रोगादि के निमित्त मिलने पर किसी अवयव के बढ़ जाने से जो नाम बोले जाते हैं उन्हें उपचित अवयव पद नाम कहते हैं। जैसे गलगंड, शीली पद, लंबकर्ण इत्यादि। हाँ, शीली पद यानी हत्ती रोग एक्सेट्रा। जो नाम ये उपचय हुआ ना, उपचित हत्ती रोग, ये उपचित और अपचित। उपचित ने बढ़ना, अपचित ने खंड होना। शीला कुछ बताए ना, शीली पद ऐसा क्वेरी लिख के रखा है वहाँ। हत्ती रोग शीली पद के लिए मेरे लास्ट। हाँ, गालगुंड गलियनी यहाँ ऐसा ये हो जाता ना बड़ा।
हाँ,
ये थायराइड का या ऐसा जो गोइटर कहते वो गलीगंड। यानी उपचित अवयव और अपचित अवयव। अपचित यानी वो तो छिन्न हो जाना, टूटना वगैरह। देखो जो नाम अवयवों के अपचय अर्थात उसके छिन्न हो जाने के निमित्त से व्यवहार में आते हैं उन्हें अपचित अवयव पद नाम कहते हैं। जैसे छिन्न कर्ण, छिन्न नासिक इत्यादि नाम। हाँ, यानी वो अवयव उसका भंग हो गया, टूट गया, छिन्न हो गया। ये उसमें लिए थे आपने द्रव्य की बात की ना, समवाय द्रव्य में संयोग द्रव्य और ये समवाय द्रव्य, वो वाली बात। अब संयोग पद नाम का कथन करते हैं। यहाँ द्रव्य की बात क्या ली थी, आदान आदान कहा था ना संयोग में प्राप्त।
हाँ,
अब यहाँ संयोग पद नाम अलग बता रहे। उसमें द्रव्य संयोग, क्षेत्र संयोग, काल संयोग और भाव संयोग के भेद से संयोग चार प्रकार का है। इभ्य, गौथ, दंडी, छत्री, गर्भिणी इत्यादि द्रव्य संयोग पद नाम है, क्योंकि धन, गूथ, धन के संयोग से इभ्य कहा, गूथ के संयोग से गौथ कहा, दंडे के संयोग से उसको दंडी कहा, क्योंकि उस आदमी को दंडी कहते हैं, छत्ते के संयोग से छत्री कहा, गर्भिणी तो समझते हैं गर्भ के संयोग इत्यादि द्रव्य के संयोग से ये नाम व्यवहार में आते हैं।
तो गर्भिणी आदान नाम बन के जाएगा कि यहाँ पे संयोग पद से जाएगा।
हाँ,
गर्भिणी द्रव्य संयोग पद में जाएगा कि आदान पद में जाएगा।
आदान में उन्होंने अलग लिए, उसका पूर्ण कलश वगैरह वगैरह जो लिखे थे।
हाँ,
वो आदान द्रव्य में। और अविधवाई ने वो तो पति के कारण वो उसको कह देना अविधवा, पूर्ण कलश ऐसा वहां ले लिया उन्होंने। तो ये नाम व्यवहार में आते हैं। नीचे कुछ लिखा है क्या? पर देखना पड़ेगा एक दो नाम कहाँ है। नाम पद के लिए ने नामेन पियुपियामहस्य नामेन मुन्नामिज्जयेत्तम नामेन, दो आंकड़ा का है प्रमाण पद, वो तो हमने पढ़ दिया। तीसरा अवयव पद के लिए फुटनोट है, अवयवेनम सिंगी सीही विषाणी दाढ़ी पक्की खरी नहीं वाली। अच्छा, दुपये चौपये समझ में आते हैं। अवयव के कारण जो नाम पड़ेंगे, सिंग वाला है उसको सिंगी कहेंगे,
સિંહ અને શેંડિયો, વિસાણી, દાડી, પક્ષી, ખરી, દુપ્પે ચોપ્પે અને દો પૈરવાળા, ચતુષ્પાદ વાળા, બહુપય, એમ કહે ને, એવું નામ પડતે ને, અંગ્રેજી મેં ભી સેન્ટીપેડ મલ્ટીપ્લેપેડ કહે છે, અને અધિક પૈર વાળા, લંગુલી પૂછવાલા, કેસરી, કૌહી, પરિયરમ બંધેન ભળમ જાણિજા, મહિલિયમ નિવસણેન સિદ્ધેન દોણવાયમ કવિમ છે એકાએ ગાહાએ. એને નીચે જે દ્રવ્ય સંયોગ ભી ઉન્હોને દો પ્રકાર કે બતાયે, ચાર નંબર કે ફૂટનોટ મેં દેખો, નીચે ફૂટનોટ મેં, સે કિમ તમ સંયોગે ન, સંયોગ સે ક્યા હૈ વો, સંયોગે ચૌ વિહે પન્નત્તે, દ્રવ્ય સંયોગ, ક્ષેત્ર સંયોગ, કાલ સંયોગ, ભાવ સંયોગ, જો અભી હમને દેખા થા વો. અબ ઉસમે દ્રવ્ય સંયોગ મેં ભી ઉન્હોને તીન બાતે બતાઈ, નીચે સે દૂસરી લાઈન ફૂટનોટ કી, દવ સંજોગે તિવે પન્નતે તમ જહા સચિત્ય અચિત્ય મિશે. પહેલે અમને એવું દેખા થા સચિત્ય અચિત્ય મિશ્ર કિસકો કહેતે હૈ, સે કિમ તમ સચિત્ય, સચિત્ય ગોહિમ ગોમિયે, મહિષિહિમ મહિષયે, ઉરણીહિમ ઉરણીયે, ઉટ્ટિહિમ ઉટ્ટિવાલે, સે તમ સચિત્ય. કિંતમ અચિત્ય, અચિત્યેન છત્તેન છત્તી, દંડેન દંડી, પડેન પડી, ઘડેન ઘડી, કડેન કડી, સેતમ અચિત્ય. એ અચિત્ય દ્રવ્ય કે કારણ જો નામ પડતે હૈ. સે કિંતમ નિષે, નિષે હલેણમ હાલીએ, સગડેણમ સાગડીએ, રહેણમ રહીએ, નાવાએ નાવીએ, સેતમ દવ સંજોગે. એને નાવિક વગેરે કહેતે હૈ, હલધર કહેતે, એસી વાત બતાવી ના. ક્ષેત્ર કી બાત બાદ મેં પઢેંગે ને, અભી હમ આતે હૈ 79 પેજ પર, પહેલી લાઈન, અસી પરશુ ઇત્યાદિ દ્રવ્ય સંયોગ પદ નામ નહીં હૈ, ક્યોંકિ ઉનકા આદાન પદ મેં અંતર્ભાવ હો જાતા હૈ. એ આપકે પ્રશ્ન કા યાને વો ધારણ કરને વાલા એસા કુછ અલગ ઉસકા અર્થ હો જાતા. શંકા, સહચારીપને કી વિવક્ષા મેં અસી પરુષ આદિ કા સંયોગ પદ નામ મેં અંતર્ભાવ હો જાયેગા, એસા નહી હૈ, ક્યોંકિ સહચારીપને કી વિવક્ષા હોને પર ઉનકા નામ પદ મેં અંતર્ભાવ હો જાતા હૈ. નામ પદ મેં હમને વો ગૌડ, અંધ્ર, તમિલ વગેરે લીધે, ઇસકો ક્યા બતા રહે, અરસી અસી ઓર પરશુ, એ નામ કેસે હોગા, વો પરશુ ધર અગર હોગા તો પરશુરામ શસ્ત્ર હૈ તો, હા, ઇસલે વો નામ પદ મેં આ જાયેગી. ક્ષેત્ર સંયોગ પદ નામ હૈ, માથુર, વાલભ, દાક્ષિણાત્ય ઓર ઔદિચ્ય ઇત્યાદિ ક્ષેત્ર સંયોગ પદ નામ હૈ, ક્યોંકિ મથુરા આદિ ક્ષેત્ર કે સંયોગ સે માથુર આદિ સંજ્ઞા વ્યવહાર મેં આતી હૈ. જબ માથુર આદિ સંજ્ઞા નામ રૂપ સે વિવક્ષિત ન હો ત तभी उनका क्षेत्र संयोग पद में अंतर्वाह हो जाता है। क्या कहते हैं, किसी का नाम भी माथुर कह सकते हैं ना, किसी का सरनेम जैसे होते हैं, तो कहते वो वहाँ के निवासी उसके उसके नाम पढ़ते हैं। पुणेरी है क्यों, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन महाराष्ट्रियन है। नहीं नहीं, माथुर मथुरा की अपेक्षा माथुर नाम आया, परंतु उसका अगर वो नाम भी हो सकता है, अगर वो नाम नहीं है तो उसके क्षेत्र संयोग ना पद में क्षेत्र संयोग पदनाम हो जाता है। शारद वासंतक इत्यादि काल संयोग पदनाम है, क्योंकि शरद और वसंत ऋतु के संयोग से ये संज्ञाएं व्यवहार में आती हैं। किंतु वसंत शरद हेमंत इत्यादि संज्ञाओं का काल संयोग पदनामों में ग्रहण नहीं होता, क्योंकि उनका नाम पद में अंतर्भाव हो जाता है। किसी का नाम रखना वसंत शरद हेमंत वो बात अलग है, और शरद ऋतु के कारण उसको शारद ये नाम देना ये बात अलग है। क्रोधी मानी मायावी और लोभी इत्यादि नाम भाव संयोग पद है। ये संयोग पद के भेद चल रहे हैं, द्रव्य संयोग, क्षेत्र संयोग, काल संयोग और भाव संयोग। यानी उसके जो भाव है उसके अपेक्षा से उसके ये नाम पड़ते हैं, क्योंकि क्रोध मान माया लोभ आदि भावों के निमित्त से ये नाम व्यवहार में आते हैं। किंतु जिनमें स्वभाव की सदृशता कारण है, ऐसी यम सिंह अग्नि और रावण आदि संज्ञाएं भाव संयोग पद रूप नहीं हो सकती, क्योंकि उनका नाम पद में अंतर्भाव हो जाता है। और वो सूर्य को भास्कर कहना वो किसमें आया था, उसमें आया था नो
गौण्य में आया
था, गौण्य गौण्य नाम में आया, गौण्य पद में आया, वो गुण की बात थी। और यहाँ पर
भाव की अपेक्षा,
हाँ भाव की अपेक्षा उसको सिंह कह देना, किसी को अग्नि समान तेजस्वी अग्नि कह देना, ये बन उक्त 10 प्रकार के नामों से भिन्न कोई और नाम पद नहीं है, क्योंकि व्यवहार में इनके अतिरिक्त अन्य नाम नहीं पाए जाते हैं। देखो नीचे जरा पढ़ेंगे, ये दो अकड़ा कहाँ, यानी अन्य जो अतिरिक्त नाम नहीं पाए जाते, ऊपर लिखा है ना सेकंड लाइन प्राकृत में अनुपलम्भात, तो उसके नीचे नीचे दो आंकड़ा फुट नोट का पढ़ेंगे हम। नामम छव्विहम कषाय पाहुर चुन्निसुत्तम, उसमें बताए हैं ये गुण पदे नो गुण पदे आदान पदे परिवक्ष पदे, ये हमने देखे ना अभी, गौण्य पद नाम देखा, नो गौण्य देखा, आदान पदे का प्रतिपक्ष पद देखा, अवचय पदे उवचय पदे चेदी, बीच में वो उन्होंने छोड़ दिया है। अभी हमने देखा ना उपचित और अपचित वगैरह, प्राधान्य पद नामानाम कथम तब भाव, प्राधान्य पद नाम वगैरह, वलाह काय च बहुसु वर्णेशु संतेषु धवला बलाह का लोकाउत्की जो नाम निर्देशो सो गुण पदे निवदी गुण मुहे न दौवम्य पौत्ति दंशनादो। ये क्या कहते, बला समझते ना, बगला बगुले की पंक्ति दिखती है ना, उसको धवल ऐसा कहते हैं। वैसे तो अन्य अन्य वर्ण वाले भी उसमें देखे जाते हैं, वही कहते हैं बहुसु अन्येषु संतेषु, अनेक वर्ण वाले होने पर भी धवला बलाह का, यानी वो सफेद बगले, ऐसे लोक में उसका नाम प्रचलित है, ये गौण्य पद है। गुण की मुख्यता से वो द्रव्य में उसकी प्रवृत्ति दिखाई देती है, धवल की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है। कयंब निम्बादी अनेगेशु रुखेशु तत्थ संतेशु जो एगेन रुखेन निम्बवनम यदि निर्देशो सो आदान पदे निवदी वनेन अत्तरुख संबंधे नेदस पौत्य दंसेनादो। हमने देखा ना वो तो निम्ब वन है, वहाँ अन्य अन्य भी वृक्ष दिखाई देते हैं, उसकी मुख्यता से उसको निम्ब वन कहते हैं। दौव खेत काल भाव संयोग पदानी, अभी हमने देखे थे संयोग पद के दो द्रव्य का संयोग क्षेत्र का पाल का भाव का राया असी धनुहर सुर लोक नयर भार हय ऐरावय सायर वासंतय कोही माणी इच्छाइणी नामानी वि आदान पदे चेव निवदंती इदम एदस्य अत्थि एत्थवा इदम अत्थि इति विवक्षाये एदेशिम नामानं पौवुत्ति दंशनादो। ये आदान पद में भी हो सकते हैं। देखो राया यानी राजा है, राया असी असी यानी तलवार, धनुहर हम कहते हैं उसको धनुर्धारी, सुर लोक नयर भार हय ऐरावय, हय यानी वो तो ऐरावत सायर वासंत, ये सभी उन्होंने सभी इकट्ठे किए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबके उदाहरण उन्होंने इकट्ठे किए उसके अंदर, क्योंकि बाद में उन्हें कोही माही इत्यादि वगैरह ले लिए। नेक्स्ट अवयव पद नामानी अवयव उवचय पद नामेशु पविसंती तेहुं तस्य भेद अभावादो। हमने देखा था कि भेद से और अभेद से या अभाव से, भाव से और अभाव से, यानी कोई अवयव बढ़ जाए या कोई छिन्न हो जाए उसके अपेक्षा से, भेद से या उसके अभाव से उसको नाम दिया जाता है। सुवर्णासा कंबुक जीवा कमल दल नयना चंदमुही, देखो ये कैसे कैसे लिखे हैं। कंबुक जीवा समझते, कंबुग्रीव नहीं समझते, वो ग्रीवा ग्रीवा ने मार कंबुक के समान होती है, कंबुग्रीव कहते हैं। कमल दल नयना कमल नयनी कहना, चंदमुही यानी चंद्रमुखी, बिंबोठी इच्छाइनी तत्तो बाहिराणी अतिथि चे नेदानी नामानी समासंत भूद इव सदत्थ संबंधे ने दौवमी प्रवृत्ति दो। ये उसके द्रव्य की प्रवृत्ति है। अभी अनादि सिद्धांत की बात बता रहे, अनादि सिद्धांत पद नामेशु जानी अनादि गुण संबंधम अवेख्य पयठाणी जीवो नानी चेनावंतोति तानी गुण पदे आदान पदे च निवदंती, जानी नौगुण पदानी तानी नौगुण पद नामेशु विनिवदंती, प्रमाण पद नामानी वि गुण पदे चेव निवदंती समानस्य दव गुणतादो अरविंद संधस्य अरविंद सन्ना नाम पदा। वही जो बात बताई जयधवला में ये बात आई थी, वहां से उन्होंने ये वाक्य ये पूरा ही डाला है। ये विशेषास में बता रहे ऊपर देखो, अभी हमने 10 प्रकार देखे ना, तो अभी यहाँ कह रहे हैं कि ये 6 प्रकार के नामों में सबको इंक्लूड कर दिया, जो 10 प्रकार बताए उसी के अभी यहाँ 6 पद 6 नाम 6 प्रकार बताए, वो 6 प्रकार अभी हमने फुटनोट में जो बताए हैं अभी इसको विशेषार्थ में पढ़ेंगे। यति वृषभ आचार्य ने कषाय प्रावृत में नाम के केवल 6 भेद बताए हैं, वे ये है गौण्य पद, हमने भी इसको देखा था, नौगौण्य पद, आदान पद, प्रतिपक्ष पद, अपचय पद और उपचय पद। पेज नंबर 80, पूर्व में जो नाम के 10 भेद कहे आए हैं अभी हमने देखे ना 10 भेद, उनमें से यहाँ पर अनादि सिद्धांत संबंधी गुण सापेक्ष नामों का गौण्य पद, और आदान पद में तथा गुण पर निरपेक्ष नामों का नौगौण्य पद में अंतर्भाव किया है, जो अभी हमने नीचे पढ़ा था। जैसे जीव नाम है, ज्ञानी नाम है, ये सब कैसे भले वो अनादि सिद्धांत के हैं, परंतु उसमें वो ज्ञान गुण की अपेक्षा उसको ज्ञानी कहा, जीव जीवत्व की अपेक्षा जीव कहा, वो गौण्य पद में आए। और ऐसे जो अनादि सिद्धांत के नाम है जो गुणों की अपेक्षा नहीं करते हैं, उनको नवगौण्य पद में इंक्लूड कर दिया, यानी वो सिद्धांत नाम वाला अलग से भेद नहीं उन्होंने बताया। छह के बदले दस के बदले छह ही बदले। प्राधान्य पद नामों का गौण्य पद और आदान पद में अंतर्भाव किया है, कौन से उसमें नहीं लिए उसकी बात कर रहे हैं। प्रमाण पद नामों का गौण्य पद में, नाम पद नामों का नौगौण्य पद में, क्योंकि कोई भी नाम सकते रख सकते हैं ना, तो नाम पद नौगौण्य में चले गए सारे। और संयोग पद नामों का आदान पद में अंतर्भाव किया है। आपने पूछा था ना संयोग पद नाम और आदान एक ही हो गया, तो उसी में उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अवयव पद नामों का उपचित पद नाम और अपचित पद नामों में अंतर्भाव हो ही जाता है। अब शंका, उन पूर्वोक्त दस प्रकार के नाम पदों में यह जीव स्थान कौन सा नाम पद है, उनको कहते हैं तो ही इसका जो विषय चल रहा है उसकी बात करो, अपने इतनी सब बातें बता दी तो ये जीव स्थान यहाँ शुरू होता है तो उसका नाम पद कौन सा है, क्योंकि उपक्रम में वो बता रहे थे ना, पहले में पहले अनुपूर्वी बताई, इसकी अनुपूर्वी दो प्रकार के हो सकती है बताया। जीवस्थान पहला खंड है इसलिए पूर्वानुपूर्वी है, और उसका जो कहाँ से निकले है वेदना खंड से निकला है, इसलिए उसमें से 75 वेदना कषाय प्राप्त। फिर अभी नाम की बात है, अब यहाँ कौन सा नाम है ये बता रहे, ये पूछा ना इसमें कौन सा नाम लेना यहाँ पर, तो यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं। समाधान 80 पेज पर, जीवों के स्थानों का वर्णन करने से जीव स्थान यह गौण्य नाम पद है। ये हो गए नाम के 10 प्रकार, ये गौण्य नाम। अब शंका, पहले मंगलाधिक 6 अधिकारों का व्याख्यान करते समय नाम पद का व्याख्यान कर ही आए हैं, उन्होंने देखा ना वो जाति द्रव्य वगैरह वगैरह अपेक्षा वहां पर भी बताई थी, तो फिर यहाँ पर ग्रंथ के प्रारंभ में नाम पद का व्याख्यान किस लिए किया जाता है, ऐसा नहीं क्योंकि पूर्व में कहे गए नाम का 10 प्रकार के नाम पदों में से किसमें अंतर्भाव होता है इसका इस कथन के द्वारा ही अन्वेषण किया है। अब प्रमाण उपक्रम बताएंगे, पहले हमने देखा अनुपूर्वी, अब नाम, अब प्रमाण, इसको प्रमाण यानी उपक्रमण का तीसरा भेद है प्रमाण उपक्रम। उसमें कहते हैं द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण, और नए प्रमाण के भेद से प्रमाण के 5 भेद है। वो प्रमाण और परोक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष में वो प्रमाण की बात नहीं है, ख्याल में है ना, वो ज्ञान वाला प्रमाण वो नहीं लेना यहाँ पर, ये ग्रंथ के प्रमाण की बात है यहाँ पर, कि द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण, भाव प्रमाण और नए प्रमाण के भेद से प्रमाण के 5 भेद है। उनमें संख्यात, असंख्यात और अनंत यह द्रव्य प्रमाण है, एक प्रदेश आदि क्षेत्र प्रमाण है, एक समय एक आवली आदि काल प्रमाण है, आभिनिबोधिक मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान के भेद से भाव प्रमाण पांच प्रकार का है। नए प्रमाण भी नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ और एवं भूत नय के भेद से नए प्रमाण सात प्रकार का है। ये प्रमाण नए वाला वो नए नहीं, नयों के भेद कितने प्रकार के नए हैं तो सात प्रकार के। अथवा नए प्रमाण आगे कहे गए वचन के अनुसार अनेक प्रकार का समझना चाहिए। अब 67 वहाँ पढ़ेंगे ऊपर। जावदीया वयनवहा तावदीया चेव होंति नयवादा, जावदीया नयवादा तावदीया चेव होंति परसमया। यदि वयना दो इस वचन से नीचे उसका अर्थ लिखा है। जितने भी वचन मार्ग है उतने ही नयवाद अर्थात नय के भेद हैं और जितने नयवाद है उतने ही पर समय है। एक कर्मकांड में आई थी बात छेव मुछेव पर समय। ये दोनों वहां पर भी है, उमरसार भी है, ये गाता उद्धृत की है। स्वतने सन्मति तर्क होना चाहिए 1:47 नीचे उसका रेफरेंस बताया है ना। परंतु इसकी रचना तो पहली हुई ना वीरसेन स्वामी की, उमर सार के बाद में लिखा गया तो उसमें ये गाथा वहां से यहाँ से ली होगी। इन्होंने भी इति वचनादो ये वचन बताया है, यानी तभी ये ऐसी गाथा ही प्रसिद्ध होगी पहले से। यानी इन्होंने जीवकांड का या कर्मकांड का रेफरेंस दिया ऐसा नहीं कह सकते, वो तो बाद में हुई ना। ऐसी ही गाथा वहां पर भी मिलती है ये कहना चाहते। देखो हमने क्या किया, द्रव्य ने वो संख्या होती है, द्रव्य प्रमाण में वो संख्यात असंख्यात अनंत हो गया। क्षेत्र प्रमाण में कितने प्रदेश, एक प्रदेश ही अलग अलग। काल प्रमाण समय अवली जो कुछ है वो ले लिया। भाव प्रमाण में ज्ञान के भेद ले लिए और नए प्रमाण में अभी ये सात नए या अनेक प्रकार के नए लिए। हाँ हाँ नए वाद यानी वस्तु को सर्वथा वैसा मानने वाला वो नए वाद है, एकांतवादी उतने पर समय कह सकते हैं। शंका, नयों में प्रमाणता कैसे संभव है अर्थात उनमें प्रमाणता कैसे आ सकती है। समाधान, नहीं, क्योंकि नए प्रमाण के कार्य है इसलिए उपचार से नयों में प्रमाणता के मान लेने में कोई विरोध नहीं आता। ये क्या कहना चाहते हैं, यहाँ उस प्रमाण की बात पूछी, नए को प्रमाण कैसे कह सकते हैं, तो कहते वो प्रमाण का ही एक देश है। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तो जो बात है ना द्रव्य प्रमाण क्षेत्र प्रमाण में नहीं, उनकी संख्या उसके प्रकार वो बात बता रहे थे, अभी उन्होंने उस प्रमाण की बात पूछी कि नयों में प्रमाणता कैसे संभव है। वो प्रमाण नहीं निक्षेप वाला प्रमाण पूछा। हाँ तो उन्होंने ये प्रमाण का ही अंग है ना, प्रमाण से जाने हुए वस्तु के एक देश को हम कहेंगे उसको नए कहेंगे। तो नए ये प्रमाण के कार्य है इसलिए उपचार से नयों में प्रमाणता के मान लेने में कोई विरोध नहीं। नयों में प्रमाणता है यानी वो सही पना है उसके अंदर, ये कहते हैं। विशेषार्थ, शंकाकार का अभिप्राय यह है कि जब नए वस्तु के एक अंश मात्र को ग्रहण करता है, सर्वांश रूप से वस्तु को नहीं जानता है, तब उसे प्रमाण कैसे माना जाए। इसका समाधान यह है कि प्रमाण द्वारा परिगृहित वस्तु में ही, परिगृहित यानी जानी हुई
पूरी तरह, हाँ,
वस्तु में ही नय की प्रवृत्ति होती है। ये तो नय की परिभाषा मुख्य है, यानी प्रमाण से जानी हुई वस्तु के एक अंश के रूप में वस्तु को देखा, पर वहाँ प्रमाण से जानी हुई वस्तु है वहाँ पर विद्यमान। और अकेले नयवाद वाले जो एकांतवाद वाले क्या है, प्रमाण से तो जानना नहीं, बस उसी एक अंश को पूरी वस्तु सर्वथा मान लेते, इसलिए उसको नयवाद कहा। एकांतवाद है ये, एकांत मिथ्यात्व के वो अलग अलग भेद है ना, क्षणिकवाद या अनेक, उसके अलग भेद है ये सारे। उसका नाम है एकांत मिथ्यात्व। एकांत मिथ्यात्व क्यों कहा, क्योंकि जितने नयवाद है तो उतने मत उसमें हो जाएंगे, वो सारे एकांत ही है। कोई क्षणिक एकांत वाला है, कोई वो सर्वथा द्वैत वाला, कोई सर्वथा अद्वैत वाला, उसमें जितने हो सकते हैं। ये सर्वथा नित्य ही मानने वाला, वो पर्याय को मानता ही नहीं है, ये सारे क्या है, एकांतवाद। देखो पर नीचे से दूसरी लाइन, प्रमाण द्वारा परिगृहित वस्तु में ही नय की प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रमाण का कार्य होने से उपचार से उनमें यानी नयों में भी प्रमाणता आ जाती है। अब कहते हैं उन पांच प्रकार के प्रमाण में से, प्रमाणों में से जीवस्थान या कौन सा प्रमाण है, हाँ देखो यहाँ केवल वो प्रमाण है ना, उसके परिमाण के अर्थ में द्रव्य क्षेत्र काल को लिया, भाव में तो उन्होंने पांच भाव प्रमाण ज्ञान सम्य ज्ञान प्रमाण वाली बात यहाँ ली थी, इसलिए शंकाकार पूछता है 82 पेज पर उन पांच प्रकार के प्रमाण में से जीवस्थान यह कौन सा प्रमाण है, क्योंकि यह भाव प्रमाण है। मति ज्ञान आदि रूप से भाव प्रमाण के भी पांच भेद है, इसलिए उन पांच प्रकार के भाव प्रमाणों में से इस जीवस्थान शास्त्र को श्रुत भाव प्रमाण रूप जानना चाहिए। देखो भाव प्रमाण के पांच भेद के ना, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान वगैरह वगैरह, तो उसमें से श्रुत भाव प्रमाण हुआ। हाँ नहीं नहीं वहाँ उन्होंने क्या देखे, बाकी तो उन्होंने वो तो उसका माप लिया उन्होंने, नहीं सभी नहीं, द्रव्य क्षेत्र और काल में उसका माप लिया, और भाव प्रमाण में उन्होंने वो ज्ञान के भेद लिए, और नए प्रमाण में वो प्रमाण वाले हाँ नयों के भेद भी बताए हैं। नए प्रमाण सात प्रकार का है, नए को ही प्रमाण कह दिया उन्होंने, जिसको यह भाव को प्रमाण कह दिया, यानी समय ज्ञान को भाव प्रमाण कह दिया, वैसे नए प्रमाण को यानी नए वाले भेद है उसी को प्रमाण कह दिया। बयासी पेज पर आते हैं, हाँ शंका, ये दो नंबर वाली शंका, पहले कर्ता का निरूपण कराए है, इसलिए उसके निरूपण करने देने से ही इस शास्त्र की प्रमाणता का निरूपण हो जाता है, यानी प्रमाण यानी वो प्रमाणता की बात यहाँ पर ले रहे हैं। द्रव्य प्रमाण में तो केवल उसका नाप लिया, परंतु इसमें तो हाँ प्रमाणता ली, अतः फिर से उसकी प्रमाणता का निरूपण करना निरर्थक है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह जीवस्थान शास्त्र प्रमाण है, अन्यथा वह जिनेंद्र देव का कहा हुआ नहीं हो सकता था। ये उस प्रमाण की बात चल रही है। इस प्रकार सामान्य रूप से जीवस्थान शास्त्र की प्रमाणता का निश्चय करने वाले शिष्य को बहुत प्रकार के भाव प्रमाणों में से यह जीवस्थान शास्त्र श्रुत भाव प्रमाण रूप है, इस तरह विशेष ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर इसकी प्रमाणता का निरूपण किया है। मैंने उसकी प्रमाणता बता दी। हाँ, पांच प्रकार बताए ना, उसमें से ये कौन सा है? शुद्ध ज्ञान। देखो, हमने जो उपक्रम की बात निकाली थी, अनुपूर्वी बताई, नाम बताया, ये प्रमाण, प्रमाण नहीं, प्रमाणता की बात बताई यहाँ पर। अथवा अथवा कह के दूसरी की बात बताए, नाम प्रमाण, स्थापना प्रमाण, द्रव्य प्रमाण, क्षेत्र प्रमाण, काल प्रमाण और भाव प्रमाण के भेद से प्रमाण छह प्रकार का, इसमें निक्षेप लगाए। हाँ, उनमें प्रमाण ऐसी संज्ञा को नाम प्रमाण कहते हैं। स्थापना प्रमाण, सद्भाव स्थापना प्रमाण और असद्भाव स्थापना प्रमाण के भेद से स्थापना प्रमाण दो प्रकार का है। तदाकार वाले पदार्थों में सद्भाव स्थापना होती है और अतदाकार वाले पदार्थों में असद्भाव स्थापना होती है। अभी द्रव्य निक्षेप, आगम द्रव्य प्रमाण और नो आगम द्रव्य प्रमाण के भेद से द्रव्य प्रमाण दो प्रकार का है। प्रमाण विषयक शास्त्र को जानने वाले परंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव को आगम द्रव्य प्रमाण कहते हैं। अथवा शब्दों की अपेक्षा संख्यात भेद रूप, वक्ताओं की अपेक्षा असंख्यात भेद रूप और तद्वाच्य अर्थ की अपेक्षा अनंत भेद रूप, ऐसे शब्द रूप आगम को आगम द्रव्य प्रमाण कहते हैं। ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त के भेद से नो आगम द्रव्य के तीन भेद समझने चाहिए। हमने बहुत विस्तार से इसको देखा था ना। उसमें ज्ञायक शरीर और भावी नो आगम द्रव्य का वर्णन पहले कर आए हैं। तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य प्रमाण संख्यात रूप, असंख्यात रूप और अनंत रूप भेद की अपेक्षा तीन प्रकार का है। यानी अभी जो हमने ये संख्यात असंख्यात वाली बात है वो उसमें तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य प्रमाण की बात आई। क्षेत्र प्रमाण और काल प्रमाण का वर्णन पहले के समान ही करना चाहिए। अभी बताए थे ना, एक प्रदेश वगैरह, एक समय वगैरह। मतिभाव प्रमाण, श्रुतभाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मनपर्य भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण के भेद से भाव प्रमाण पांच प्रकार का है। इनमें से यह जीवस्थान नाम का शास्त्र भाव प्रमाण की अपेक्षा श्रुतभाव प्रमाण रूप है और द्रव्य की अपेक्षा संख्यात असंख्यात और अनंत रूप शब्द प्रमाण है। यही रुकेंगे अभी। यानी उसमें सब निक्षेप लगा कर ये कौन सा निक्षेप से क्या कहना है वो सब बातें बताइएगा। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अश्विन भाई,
नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सवणम, नमो